नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के इस अध्ययन को शुरू करने से पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के जीवित और सामर्थ्य वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। इतना ही नहीं, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि नबूकदनेस्सर ने, जो बेबीलोन का राजा था, एक स्वप्न देखा और परेशान हो गया। उसने ज्योतिषी और तंत्रियों को बुलाया कि वे उसका अर्थ बताएं, परंतु वे उसका अर्थ नहीं बता पाए। तब उसने कहा, दानियल को बुलवाओ, वही अर्थ बताएगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। राजा इस बात को जानता था कि दानियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और तब उसका स्वप्न सुनकर दानियल ने संकोच किया, परंतु राजा पर सत्य तो प्रकट करना ही था। अतः उसने बड़ी सावधानी पूर्वक युक्ति के साथ स्वप्न का अर्थ सुनाया। मित्रों, हमने यहां तक पिछले अध्ययन में देखा है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नबूकदनेस्सर की विक्षिप्त अवस्था। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम जीवितों के बीच में जीवित रहकर आपके सच्चे और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। यद्यपि हम बहुत दूर रहते हैं, दूर दराज में हैं, फिर भी प्रभु आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनकर सीख सकते हैं। आज जब हम एक साथ मिलकर अध्ययन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि एक एक भाई बहन आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर सके। इतना ही नहीं, हम विनती करते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, परंतु बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, बोझिल दिल के साथ आपके पास बैठे हैं, आपकी वाणी सुनना चाहते हैं, पिताजी आप उन पर कृपा दृष्टि करें। आज के वचन के द्वारा आप उनसे बोले और बातचीत करें, उनके हृदय को स्पर्श करें, उनके जीवन के हर एक परेशानियों से आप अभी इसी वक्त उन्हें छुटकारा दें, ताकि वे स्वस्थ और भले चंगे होकर आपको धन्यवाद देने पाएं। आज के वचन के द्वारा आप हम सबको आशीषित करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ दानियल नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय को निकाल लीजिए। जी हाँ, 4 अध्याय उसके 28 से 30 पद में हम पढ़ते हैं, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर नबूकदनेस्सर ने दानियल की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। उसके 1 वर्ष का सुधार का समय समाप्त हो गया और उसे दंड भी मिला। परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी है, वह कैसा धीरजवंत है, दुष्ट इसे नहीं समझता है। आप इसे देख सकते हैं बाइबल में से सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय उसके 11 पद में। मेरे प्रियो, राजा की दुर्दशा का समय अब आ गया था। परमेश्वर ने उससे कहा था कि यह महान राज्य उसने उसे दिया है, परंतु वह अपने राज्य को देखकर कहता है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से बसाया, अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। इतिहास में असंख्य स्त्री पुरुषों ने अपने राज्य बनाकर घमंड किया है। मैं पराया युवा प्रचारकों को परामर्श देता हूं, मित्रों, अपने कलीसिया को अपना साम्राज्य नहीं बनाना, क्योंकि मैं आरंभ में इसी सिद्धांत पर चला था और उस समय की तुलना में मैं इतना अधिक अशांत और अप्रसन्न कभी नहीं रहा। दानियल के इस गद्यांश ने मुझे प्रभावित किया है और मुझे यह बोध हुआ कि मैं एक साम्राज्य बना रहा हूं जो मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मेरी सेवा मनुष्यों के निर्माण हेतु है, राज्य निर्माण के लिए नहीं, आज जैसा कि बहुत सारे सेवकगण करते हैं। अतः मैं युवा प्रचारकों से कहता हूं, मनुष्यों का जीवन निर्माण करो और मेरे विचार में परमेश्वर आपको जो देना चाहता है वह अपने समय में अवश्य ही देगा। आगे हम पढ़ेंगे दानियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 31 से 33 पद में लिखा है, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 साल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा। उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उका पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। मेरे मित्रों, राजा नबूकदनेस्सर राजमहल से निकलकर जंगल में चला गया। परमेश्वर ने उसे दंड दिया। वह विवेक और सामान्य जीवन से वंचित हुआ और उसका साम्राज्य उसके हाथ से निकल गया। उस युग में मानसिक रोगियों के लिए अस्पताल नहीं थे, उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। सामान्य परिस्थिति में तो नबूकदनेस्सर फिर कभी सिंहासन पर नहीं बैठता, परंतु परमेश्वर ने कहा था कि वह उसे सबक सिखाने के बाद पुनः सिंहासन पर बैठाएगा। मेरे प्रियो, आप जान सकते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है हमें सिखाने के लिए। नबूकदनेस्सर की मृत्यु से पूर्व उसके साथ घटी इस दुर्घटना का उल्लेख इतिहास में भी पाया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं स्वप्न की पूर्ति और नबूकदनेस्सर को स्वास्थ्य लाभ। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय के 34 पद में लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। मेरे प्रियो, राजा अर्थात उसका मानसिक स्वास्थ्य सुधर गया और उसने जो गवाही दी वह हम अध्याय के आरंभ में ही देख चुके हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं दानियल 4 उसके 35 पद में लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। ध्यान दीजिए, नबूकदनेस्सर ने सीख लिया था कि परमेश्वर जगत का संचालक है, उसी के हाथ में सब कुछ है। नबूकदनेस्सर ने स्वीकार किया कि उसके साथ जो हुआ वह परमेश्वर की ओर से था। उसने अपना घमंडी मन परमेश्वर को दे दिया। आज के अधिकांश विश्वासियों को भी ऐसा ही करना है। हमें यह जान लेना है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जी हाँ, जो जीवन आप जी रहे हैं यह आपका नहीं है, यह परमेश्वर का है और वह चाहता है कि आप उसके लिए जिएं, उसको महिमा दें। दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसके 36 और 37 पद में आगे हम पढ़ते हैं, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। मेरे प्रियो, नबूकदनेस्सर की मानसिक स्थिति सामान्य हो गई और वह पुनः सिंहासन पर बैठा। उसके कर्मचारी उसकी सेवा में उपस्थित हुए। उसकी रोग अवस्था में उसके राज्य पर कोई संकट नहीं आया, वरन जीवित एवं सच्चे परमेश्वर के अधीन होने के कारण उसका वैभव बढ़ गया। जी हाँ, इसे हम राजा की गवाही के द्वारा से जानते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और अध्याय 5 से अध्ययन को जारी रखेंगे। इस अध्याय का विषय है बेलशस्सर का भोज, दीवार पर उंगली से लिखा जाना, ज्योतिषी भाषा पढ़ने में असमर्थ, दानियल राजा का उपहार अस्वीकार करता है, दानियल दीवार पर लिखा लेख पढ़कर सुनाता है और तब उसी रात बेबीलोन का पतन भी होता है। मेरे प्रियो, आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे अध्याय 5 की घटनाएं अध्याय 4 के लंबे समय बाद की है। यह भी इतिहास से लिया गया एक भाग है। अध्याय 4 के बाद अनेक घटनाएं घटी हैं तो अध्याय 5 में हम देखेंगे बेलशस्सर का भोज। दानियल नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1,000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1,000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। अब यह बेलशस्सर कौन था और वह बेबीलोन के सिंहासन पर कैसे बैठा? दानियल इतिहास में एक विवाद का विषय है, अतः हम कुछ पल उसकी चर्चा करेंगे। डीन फिरार का कहना है, बेलशस्सर नाम का कोई राजा नहीं हुआ। जॉन वालवुड का कहना है, नबोनिदुस लेखों की खोज तक बेलशस्सर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं था। दानियल के पुस्तक के आलोचकों को बेलशस्सर की उपस्थिति पर प्रश्न करने की स्वतंत्रता थी, परंतु नबोनिदुस के लेखों से प्रकट है कि बेलशस्सर के अस्तित्व पर प्रश्न न उठाया जाए। रेमंड डॉहर्टीज उस लेख में बेलशस्सर का उच्चारण बेल शर उसूर लिखा है और उसे नबोनिदुस का पुत्र कहा गया है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि वह अपने पिता की गद्दी पर बैठकर शासन चला रहा था। नबूकदनेस्सर के राज्य के बाद की घटनाएं यहां हमारी सहायता करेंगी। नबूकदनेस्सर की मृत्यु के बाद उसका एकलौता पुत्र इविल मेर्दोक लगभग 561 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। इसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय के 27 पद में पढ़ते हैं। इविल मेर्दोक अपने बहनोई निर्गल सरेजर द्वारा घात किया गया था और 559 ईस्वी पूर्व में वह राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका पुत्र कुछ ही महीने सिंहासन पर बैठा कि नबोनिदुस द्वारा घात किया गया। नबोनिदुस नबूकदनेस्सर का दूसरा दामाद था। नबोनिदुस युद्ध अभियानों में अधिकतर बाहर ही रहता था, अतः उसका पुत्र बेलशस्सर राज्य की देखरेख किया करता था। इन सब बातों से यिर्मयाह के वचन की सिद्धता प्रकट होती है, जिसे हम यिर्मयाह की पुस्तक 27 अध्याय उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दे दिया है कि वे उसके अधीन रहें। ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोते की अधीन उस समय तक रहेंगे जब तक उसके भी देश का दिन ना आए। तब बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उससे भी अपने सेवा करवाएंगे। अर्थात बेबीलोन पर नबूकदनेस्सर की 3 पीढ़ियां राज्य करेंगी, तदुपरांत उसका पतन हो जाएगा। मेरे प्रियो, मिट्टी की एक तख्ती पर नबोनिदुस की प्रार्थना लिखी है, जिसमें वह कहता है, मेरा वंशज मेरा पुत्र अपने देवताओं का सम्मान करे और पाप में ना गिरे। वह चंद्रमा से यह प्रार्थना कर रहा था। हेरोदोतस भी इसकी पुष्टि करता है। मेरे प्रियो, अध्याय 5 की घटनाओं में अर्थात 5 के घटनाओं के समय नबोनिदुस युद्ध क्षेत्र में था और उसका पुत्र बेलशस्सर बेबीलोन में था। ध्यान दीजिए कि बेलशस्सर दानियल को तीसरा शासक बनाने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा क्यों नहीं? क्योंकि अपने पिता के साथ दूसरा शासक तो वह स्वयं ही था। जब बेलशस्सर खाने पीने में व्यस्त था, तब मादी सेनापति गब्रियास ने बेबीलोन को घेर रखा था। जीनोफोन यूनानी इतिहासकार कहता है कि मादी सेना ने शहर से निकलने वाली नहर का पानी मुख्य नहर में ही रोककर जल प्रवाह के स्थान को प्रवेश द्वार बनाकर बेबीलोन में प्रवेश किया था। अतः इस अध्याय की घटनाएं जिन पर आलोचक वर्षों से संदेह करते आ रहे हैं, अब इतिहास से भी सिद्ध हो गई है। इतिहास प्रायः झूठ भी कह देता है। परंतु यहां परमेश्वर का वचन और इतिहास सुसंगत है। बेलशस्सर राजा ने अपने 1,000 प्रधानों के लिए एक बड़ा भोज किया और उन 1,000 प्रधानों के सामने दाख मधु पिया। इस युवक बेलशस्सर का अभिमान देखिए, बैरी बाहर खड़ा है और वह रंगारंग में मस्त है। शायद वह सोच रहा था कि बेबीलोन में बैरी के प्रवेश की संभावना है ही नहीं, क्योंकि वह दृढ़ गढ़ वाला नगर है। नबूकदनेस्सर ने शहरपनाह ऐसी दृढ़ बनवाई थी कि बैरी उसे कभी पार न कर पाए। ईंटों की बनी यह शहरपनाह क्षेत्रफल में 5 वर्ग मील थी। उसकी ऊंचाई 300 फुट और चौड़ाई 4 रथों के साथ साथ चलने के लिए पर्याप्त थी और वहां जल एवं अन्न का भंडार वर्षों के लिए था। पारात नदी की एक नहर नगर में लाई गई थी। बेलशस्सर का भोज बैरी के उपहास में या भीतर उपस्थित जनता के साहस को बढ़ाने के लिए था। लिखा है कि उन्होंने मदिरा पान द्वारा भोज का आरंभ किया था। आज भी मदिरा अर्थात शराब दुर्बल मनुष्यों को साहस बंधाती है, परंतु यह देश के लिए एक समस्या है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब स्कूल, कलिसिया के अगुए और राजनेता नशे की समस्या के समाधान पर विचार करने के लिए एकत्र हुए तो उन्होंने सभा का आरंभ मदिरा पान से किया था। यह कैसा पाखंड है। दुर्घटनाओं में मरने वाले अधिकांश जनों के रक्त में शराब पाई जाती है। आज हमारे युवा पीढ़ी शराब के अधीन हो गए हैं, नशे के अधीन हो गए हैं। शराब पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। परिवार टूट रहे हैं, शराब के कारण अनेक राष्ट्र नाश हुए हैं। मैं ऐसे अगुओं का मान नहीं रख पाता जो नशीली दवाओं की समस्या को दूर तो करना चाहते हैं परंतु स्वयं शराब पीना नहीं छोड़ते। बच्चों को मना करते हैं परंतु स्वयं उसी कार्य को करते हैं। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि बेलशस्सर ने शराब से आरंभ किया कि उसके अतिथि नशे में आकर भोज का पूरा आनंद उठाएं। हम आगे पढ़ते हैं दानियल 5 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। मेरे मित्रों, नशे में वह ऐसा अभद्र व्यवहार करता है जो उसका नाना कभी नहीं करता। नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर को लूटकर सब पात्र अपने देवता के मंदिर में रखने के लिए ले गया था, परंतु जीवते परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद, उसे जानने के बाद, उसने मंदिर के सब पात्र भंडार गृह में सुरक्षित रखवा दिए थे। मेरे विचार में जब बेलशस्सर राजमहल में बड़ा हो रहा था तब उसे उन पात्रों को छूने नहीं दिया जाता था, परंतु अब क्योंकि वह सत्ता उसके हाथ में है, वही राजा है, तो उसने उन पात्रों को निकलवाया और उसमें शराब पी। ये पात्र पवित्र थे अर्थात केवल परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग किए गए थे। बेलशस्सर द्वारा उन्हें काम में लेने का अर्थ था कि वह परमेश्वर को चुनौती दे रहा है। बेलशस्सर जानता था कि उसका नाना परमेश्वर को जानता था और उसकी स्तुति भी किया करता था, उसका आदर करता था, जैसा कि हम पद 22 में पढ़ते हैं। तथापि उसने परमेश्वर के नाम को अशुद्ध करने का प्रयास जानबूझकर किया। यह परमेश्वर को उसकी चुनौती थी। नीति वचन की पुस्तक 29 अध्याय के 1 पद में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। मेरे प्रियो, भोज का दृश्य भोग विलास और रंगारंग से भर गया था। सब कोई नशे में थे। मुझे अब भी याद है कि एक प्रचारक कहता था कि इस भोज में लड़कियां नाच रही थी, शराब के दौर चल रहे थे और वातावरण अट्ठासों से गूंज रहा था, ठीक वैसे ही जैसे रात की रंगशालाओं में होता है। परंतु धर्मशास्त्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मेरे प्रियो, यह बहुत ही गंभीर बात थी। हम आगे देखते हैं, दानियल की पुस्तक 5:4 में लिखा है, वे दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। वे नशे में थे, वे देवताओं को श्रद्धा अर्पित कर रहे थे। सब देवताओं को श्रद्धा अर्पित करने में उन्हें एक दिन से अधिक समय लगता है। वे आराधना के रूप में पाप ओढ़ते थे और धर्म के पर्दे के पीछे निंदा करते थे। और तब क्या होता है कि परमेश्वर की उंगलियां दीवार पर कुछ लिखती हैं। देख राजा भयभीत हो जाता है। तो मित्रों, हम इसके बारे में अपने अगले अध्ययन में देखेंगे, क्योंकि यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मेरे प्रियो, हम इस वचन पर विचार करें कि परमेश्वर ने एक राजा को राजगद्दी दी है, परंतु वह परमेश्वर की नहीं परंतु अन्य देवताओं की उपासना कर रहा है और वह परमेश्वर को चुनौती दे रहा है। आज हम में से कई लोग अपने जीवन को इसी प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं। नशे में हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे जवान भाई बहन नशे में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम इन जवानों के लिए प्रार्थना करें, हमारे जवान भाई बहन सच्चे परमेश्वर को पहचाने पाएं, अपने जीवन से परमेश्वर को आदर देने पाएं, क्योंकि यह जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है अपनी महिमा के लिए। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? मेरे प्रियो, मुझे आशा है कि आज के वचन के द्वारा आप अपने जीवन में अवश्य ही परिवर्तन लाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।